राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चरी यमुना तीरा बन चरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस सप्तिवराज गचार्य स्तोत्र शास्त्री श्रीमदीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रभु सिस्कॉन फाउंडर आचार्य शिव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौणताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 50 पृष्ठ संख्या 543 हाँ सब लोग मेरे पीछे बोलिए सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा और सब लोग ऊंचे स्वर में बोलिए सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेन वैकुंठेय निष्ठा ज्ञानस्य परा। बोलिए शब्दार्थ बोलिए। सिद्धिम सिद्धि को प्राप्त प्राप्त किया हुआ यथा जिस तरह है ब्रह्मा परमेश्वर तथा उसी प्रकार आपनोति प्राप्त करता है निबोध समझने का यत्न करो। मैं मुझसे समासेन संक्षेप में एवं निश्चय ही कौन्तेय हे कुंती पुत्र निष्ठा अवस्था ज्ञानस्य ज्ञान की या जो परा दिव्य। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे कुंती पुत्र जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा उसे तुम जानो। तो यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सुनवादी पाशाद देश तारिने। हाँ, इस श्लोक निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म था अपनोति न बोध में। जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, समासी नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य अपरा। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको संक्षेप से सुनो। ये ज्ञान की परानिष्ठा है, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसको तुम सुनो, संक्षेप से सुनो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। भगवान कह रहे हैं समासेन। समासेन का मतलब संक्षेप में सुनो। तो संक्षेप में भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सन्यास की विधि है। जैसा कल भी हमने चर्चा की थी कि अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे सन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग समझाइए, है ना। तो त्याग का तत्व भगवान ने समझाया 48वें श्लोक तक, और सन्यास की विधि का वर्णन केवल 7 श्लोकों में भगवान कर रहे हैं, 49वें श्लोक से लेकर के 55वें श्लोक तक। तो सन्यास की विधि को भगवान संक्षेप में इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि ये विधि सबके लिए आसान नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में ही ज्ञान की वास्तविक सिद्धि है। भगवान ने कहा है निष्ठा ज्ञानस्य अपरा, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा। तो हम देखेंगे कि अगले 3 श्लोकों में भगवान ने सन्यास की विधि से बताया कि कैसे कोई व्यक्ति अपने मन को, वाणी को, शरीर को वश में करता है, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इनसे मुक्त होता है और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। और उसके बाद फिर भगवान कहते हैं मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। और फिर 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उस भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जान पाता है तत्व से कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। तो यही ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, और 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं पराभक्ति। यहां ज्ञान की परानिष्ठा, और 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान पराभक्ति प्राप्त करता है मेरे प्रति, उस पराभक्ति से मुझे जान पाता है कि मैं कौन हूं कैसा हूं, मतलब भगवान को जानता है। वह ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो क्या है? भगवान, भगवान को जानना, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, इनको जानना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो अब हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करते हैं। एकांत में जो साधना करते हैं, अपना राज्य छोड़ करके पत्नी के साथ जंगल में जाते हैं और एकांत साधना करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद का 23वां अध्याय है। अध्याय का नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। इस श्लोक संख्या 9 में मैत्रेय जी बताते हैं विदुर जी को। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के पथ का अनुसरण किया, जिसका उपदेश सनत कुमार ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। सनत कुमारो भगवान, यदाहाध्यात्मिकं परं योगं तेन विपुषं अभजन पुरुषर्षभम्। तो तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि सनत कुमार के उपदेश के अनुसार महाराज पृथु प्राणायाम योग करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहे। इस श्लोक में पुरुषम अभिजत पुरुषर सभा शब्द महत्वपूर्ण है। पुरुषर सभा महाराज पृथु के लिए आया है जो मनुष्य में श्रेष्ठ है, और पुरुषम श्री भगवान के लिए आया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है वह परम पुरुष की सेवा करता है। पहला पुरुष शब्द पूजनीय के लिए तथा दूसरा पुरुष शब्द पूजक के लिए है। जब पूजा करने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने को परम पुरुष से एकाकार मानता है तो वह मोहित होकर अविद्या के अंधकार में गिर जाता है। समझे, अपने को भगवान से एक मानना ये क्या है, अविद्या है। तो ये अंधकार है, ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो ज्ञान की जो परानिष्ठा है वो क्या है, भगवान को जानना और भगवान की पूजा करना, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है, है? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दो बार कहा है, युद्ध क्षेत्र में एकत सभी प्राणी तथा कृष्ण भी स्वयं भूतकाल में भी व्यक्तियों के रूप में थे और भविष्य में भी रहेंगे। फलतः दोनों पुरुष जीवात्मा और परमात्मा कभी भी अपनी सत्ता नहीं खोते, हमेशा अलग रहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव में जो स्वरूप सिद्ध है वो इस जन्म में तथा अगले जन्मों में भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। ठीक है ना, भक्तों के लिए वास्तव में इस जीवन और अगले जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। इस जीवन में नव दीक्षित भक्त को भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और अगले जीवन में वह वैकुंठ में भगवान के निकट पहुंच जाता है और वैसी ही सेवा करता रहता है। आप समझे, तो भक्त के लिए कोई अंतर नहीं है, यहां पर भी भगवान की सेवा करता है, वैकुंठ में भी भगवान की सेवा करता है ना। हाँ, नव दीक्षित भक्त के लिए भी भक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते मानी जाती है। भगवत भक्ति को कभी भी भौतिक कर्म नहीं माना जाता, ब्रह्मभूत पद से कर्म करने के कारण भक्त पहले से ही मुक्त हो जाता है। अतः उसे ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचने के लिए किसी अन्य प्रकार के योग साधन की आवश्यकता नहीं रहती। यदि भक्त गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो यह समझना चाहिए कि उसने ब्रह्मभूत अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली है, जैसा कि भगवद गीता में 14:26 पुष्टि की गई है, माम च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। अब देखिए आगे पृथु महाराज क्या करते हैं। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे, कौन महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्णतया भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति उनमें प्रेम और भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। भगवन धर्मिणा साधो श्रद्धया यदता सदा भक्तिर भगवती ब्रह्म अनन्य विषया भवन। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत धर्मिणा शब्द बताता है कि महाराज पृथु जिस धार्मिक विधि का पालन कर रहे थे वह बनावटी से दूर थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में 1:1:2 कहा गया है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र, जो धार्मिक नियम केवल बनावटी हैं, वे ठगने के अलावा और कुछ नहीं। वीर राघवाचार्य ने भगवत धर्मिणा की व्याख्या निवृत्त धर्मेण के रूप में किया है, जिसे सूझ होता है कि ये भौतिक महत्वाकांक्षाओं से कलुषित नहीं हो सकता है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, क्या कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा दिनामृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमम। जब कोई भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, कर्म की विधियों से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह भगवान की उपयुक्त सेवा में लगा रहता है, तो उसकी सेवा भगवत धर्म कहलाती है या शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस श्लोक में ब्रह्मणी निर्गुण ब्रह्म का सूचक नहीं है, निर्गुण ब्रह्म श्री भगवान के अधीन है और चूंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, अतः वे भगवत धर्म के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। अपने भौतिक सुख में भ्रमित होकर निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। अतः शुद्ध भक्त वास्तव में भगवत धर्मी होता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि महाराज पृथु कभी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक ना थे, वे सदैव श्री भगवान के शुद्ध भक्त ही रहे। भगवती ब्रह्मणी में से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो श्री भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भक्त को निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्म में कभी भी एकाकार होना नहीं चाहता। महाराज पृथु अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में स्थिर हो गए, उन्हें कर्म ज्ञान या योग की शरण नहीं लेनी पड़ी। भक्ति के द्वारा सीधे भगवान को प्राप्त किया पृथु महाराज ने। आगे निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का चिंतन करने लगे। इससे वे परम विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो चुके थे। तस्यानया भगवता परिशुद्ध कर्म, तस्यानया भगवता परिकर्म शुद्ध सत्वात्मन सदनु संस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तिमद्भून निशितेन येन चिच्छेद संतय पदं निज जीव कोशम। तात्पर्य लिखा है, नारद पंचरात्र में भगवान की भक्ति की उपमा किससे की गई है, महारानी से। भगवान की भक्ति तुलना की गई है किससे, एक महारानी देवी से की गई है। जब महारानी दर्शन देती हैं तो अनेक सेविकाएं उनके साथ रहती हैं, तो भक्ति देवी की सेविकाएं कौन है, ऐश्वर्य मुक्ति और योग शक्तियां, ये सब भक्ति देवी की कौन है, सेविकाएं हैं। कर्मी लोग भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं, ज्ञानी लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए इच्छुक रहते हैं और योगी आठ प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। और नारद पंचरात्र से हमें ज्ञात होता है कि जिसे शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है उसे कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त ऐश्वर्य और ज्ञान तथा योग भी प्राप्त हो जाते हैं। अतः श्रील बिल्ल मंगल ठाकुर ने अपने कृष्ण करणामृत में प्रार्थना की है, हे भगवान, यदि मुझ में आपके लिए अटूट भक्ति है, क्या यदि मुझ में आपके लिए अटूट भक्ति है तो आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए, फिर तो कर्मों के फल और ज्ञान धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये सब मेरे अनुचर बनकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। क्या मतलब, भक्ति से भगवान अगर प्रकट हो जाए तो बाकी सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, भाव ये है कि ज्ञानी लोग ब्रह्म विद्या से संस्कारित होकर प्रकृति के चंगुल से निकलने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, किंतु भक्त ही ऐसा है जो अपनी भक्ति के बल पर स्वतः अपने भौतिक शरीर से विरक्त हो जाता है। जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर व्यक्त होने लगता है तभी वह दिव्य जीवन के कार्यों में प्रविष्ट होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस समय हमारा शरीर मन तथा बुद्धि सभी भौतिक हैं जिनसे हमारा संपर्क है, किंतु जब हम इन भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे आध्यात्मिक शरीर मन तथा बुद्धि प्रकट होते हैं। उस आध्यात्मिक अवस्था में भक्त को कर्म ज्ञान और योग के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि भक्त को किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, किंतु वह स्वतः उसके समक्ष प्रकट होता है। क्या भौतिक ऐश्वर्य? हाँ, उससे इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अपनी भक्ति के कारण वह स्वतः ब्रह्मभूत हो जाता है, जैसा पहले कहा जा चुका है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 14:26 की गई है। माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत है और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो मतलब कहने का यह है कि अगर केवल भक्ति में लगे रहो तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्त को जीवन की दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। उसका मन अध्यात्म में लगा रहने के कारण वह भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ और सोच ही नहीं सकता। संस्मरण अनुपूर्त्या, शब्द का अर्थ यही है, भगवान के चरण कमल का निरंतर चिंतन करते हुए भक्त अविलंब शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। शुद्ध सत्व वो पद है जो सत्वगुण समेत प्रकृति के गुणों से ऊपर होता है। इस भौतिक जगत में सत्वगुण परम सिद्धि का सूचक है, किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघकर शुद्ध सत्व अवस्था तक पहुंचना होता है, जहां तीनों गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है, क्या समझे, किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन करने के पश्चात उसके उदर में स्वतः इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाती है कि बिना किसी औषधि के सब कुछ पच सकता है। इसी प्रकार भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ करना नहीं होता, या भौतिक आकर्षण से विरक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ प्रयत्न करना नहीं होता। ज्ञानी ज्ञान के विषय में दीर्घ काल तक विवेचन करते रहने से विरक्त हो सकता है और अंत में ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच सकता है, किंतु भक्त को ये सब झंझट नहीं करने पड़ती। अपनी भक्ति के बल पर वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। योगी तथा ज्ञानी अपनी स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। क्या समझे, योगी और ज्ञानियों को हमेशा संशय बना रहता है कि उनको सफलता मिलेगी या नहीं, किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध निस्संशय रूप से स्पष्ट रहता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, दास की। उसकी स्थिति दास की है, यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान की पराकाष्ठा यह है क्या, कि मैं भगवान का दास हूं। उसकी स्थिति दास की है। ज्ञानी तथा योगी भक्ति के बिना अपने को मुक्त समझ सकते हैं, किंतु उनकी बुद्धि भक्ति जैसी विमल नहीं होती। जितनी बुद्धि भक्ति की निर्मल होती है, उतनी बुद्धि ज्ञानी और कर्मी की नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, ज्ञानी तथा योगी जब तक भक्तों की स्थिति को प्राप्त नहीं हो लेते, तब तक मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत में 10:2-32 का कथन है, आरोह कृत्रेण परम पदम तथा स्वतंत्र नादृष्मदंग्रयः। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात्कार के पद तक उठ सकते हैं, किंतु भगवान के चरणारविंद के प्रति भक्ति के अभाव में वे पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। देखा, तो ब्रह्म पद तक आ सकता है कोई व्यक्ति? ब्रह्म पद का मतलब क्या है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन ब्रह्म हूं, ये तो जान लेता है। लेकिन भगवान को जानना भक्ति के बिना संभव नहीं है, ब्रह्म से आगे परमात्मा का साक्षात्कार है और परमात्मा के साक्षात्कार से आगे भगवान का साक्षात्कार होता है ना। तो तो भगवान का साक्षात्कार बिना भक्ति के नहीं हो सकता, ये ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई योगी कर सकते हैं, ये भगवान का साक्षात्कार भक्ति के बिना नहीं हो सकता। तो कृपा लिखते हैं, अतः ज्ञान तथा योग को मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। महाराज पृथु ने भक्ति के द्वारा इन स्थितियों को स्वतः लांघ लिया था, क्योंकि वे भगवान के सत्यावेश अवतार थे, अतः मुक्ति के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए बैकुंठ लोक से आए थे। कौन? पृथु महाराज। फलतः उन्हें ज्ञान योग या कर्म किए बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था। यद्यपि पृथु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने लोगों को जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न करने तथा भगवान के धाम वापस जाने का ज्ञान सिखाने के लिए भक्ति की विधि स्वीकार की। पृथु महाराज को भक्ति की विधि का पालन करने की जरूरत नहीं थी, वो पहले से शुद्ध भक्त थे। क्यों? क्योंकि भगवान के वैकुंठ धाम से आए थे पहले से ही है? तो भगवान के धाम में वो बिना विधि का पालन किए जा सकते थे, क्योंकि वे पहले से ही शुद्ध भक्त थे। नहीं, फिर भक्ति की विधि का क्यों पालन कर रहे हैं? हम लोगों को सिखाने के लिए कि हमें इस विधि के द्वारा भक्त बनना है भगवान के। आगे क्या हुआ? पृथु महाराज ने क्या किया? जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण दिया मुक्त हो गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की